ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साइप्रस भागीदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन में दृढ़ता से निहित है। निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता परिस्थितियों या सीमाओं से बंधी न होकर समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष शीघ्र ही एक गतिशीलता समझौता संपन्न करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने साइप्रस को यूरोपीय संघ की आगामी अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस के निरंतर समर्थन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की।
पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है।
दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की समस्या का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच एक वास्तविक समय सूचना विनिमय तंत्र विकसित करने की घोषणा की। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस 3 से सम्मानित किया। सरकार ने जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी कर दी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आपदा रोधी ढांचे की मजबूती से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक प्रमुख बना है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल वैक्सीन का 70% हिस्सा भारत से प्राप्त होता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के राज्य में फिर से जाति जनगणना कराने के फैसले की आलोचना की है। नई दिल्ली में वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महज वोट बैंक हैं। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि पहले जाति जनगणना पर खर्च हुए सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 महिलाओं की मौत हो गई और 6 से अधिक अन्य घायल हो गए। घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 99 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से 64 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों से बचने तथा निशुल्क और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 678 अंक बढ़कर 81,796 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 228 अंक चढ़कर 24,947 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।